We are thrilled.
हम आपको आमंत्रित करते हैं यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का महाजवान महिलाओं के सभा में. हम कॉन्फ्रेंस सेंटर जो सॉल्ट लेक सिटी यूटा में है, हम आज रात एकत्रित हुए हैं और विश्वास और हम जवान महिलाओं, उनके माता और उनके नेताओं के ऐसी सभा हो रहे हैं. तुम सब एक सुंदर दृश्य हो. प्रधान मॉनसन जो इस सम्मेलन के नेतृत्व करता है ने कहा कि मैं संचालन करूं. मैं बहन डेल्टन हूं, जवान महिलाओं के महा अध्यक्ष. हम सम्मानित हुए हैं अपने प्रिय भविष्य वक्ता प्रधान मॉनसन, उनके सलाहकारों प्रधान आयरिंग और प्रधान उगडॉफ, एल्डर हेल्स और एल्डर एंडरसन 12 के परिषद के, एल्डर्स क्रिस्टेंसन और हेफन 70 के और बिशप बर्टन की उपस्थिति से. हम इन भाइयों को पुष्टि करते हैं और सम्मान करते हैं. मंच पर बैठे हुए हैं मेरे सलाहकार जिससे मैं प्रेम करती हूँ, बहन मैरी एन कुक और एन एम डेब. हम प्रेम और कृतज्ञता से आभार प्रकट करते हैं सहायक संस्था के महाअध्यक्षता और प्राथमिक के महाअध्यक्षता को, साथ में जवान महिलाओं के जनरल बोर्ड के सदस्यों को भी. हम अपनी शुभकामनाएं सभी को अर्पित करते हैं जो आज शाम उपस्थित है और उन सभी को जो अन्य सदारों से भाग ले रहे हैं. इस सभा के संगीत एक जवान महिला की गायक मंडली जो लिहाई यूटा ईस्ट, लिहाई यूटा नॉर्थ और लिहाई यूटा साउथ स्टेट्स के है द्वारा प्रदान किया जाएगा. मेरली वेब के निर्देशन में और साथ में ओगन पर होगी बोनी गुडलिव. गायक मंडली अब गाएगी हाई ऑन द माउंटेन टॉप. उसके बाद प्रार्थना कार्ली गुरबला द्वारा बोला जाएगा जो नॉर्थ ऑगडन यूटा बेन लोमन स्टेक में एक लोरल है.
Our dear kind gracious Heavenly Father,
हमारे पिता परमेश्वर, हम बहुत आभारी है कि हम सब यहाँ इकट्ठा हो सके कॉन्फ्रेंस में और इसको सुन सके. हमें आशीष दीजिए कि पवित्र आत्मा हमारे पास रहे.
आभारी
है कि हम आपके बेटियाँ हैं और हम आभारी है जितना कभी सभी आशीष के लिए. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिल नर्म होए और हम धन्यवाद देते हैं प्रेसिडेंट मॉनसन उसके काउंसलर्स के लिए. हम धन्यवाद देते हैं जनरल रियंगमन प्रेसिडेंसी के लिए और हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमेन.
The choir will now sing.
गायक मंडली गाएगी Dearest children, God is near you. गीत गायन के बाद बहन डेब हमसे बातें करेगी. उनकी टिप्पणियों के बाद हम बहन कुक से सुनेंगे जो जवान महिला की महाअध्यक्षक के प्रथम सलाहकार है. हम इसके बाद एक छोटा वीडियो देखेंगे जिसमें विश्व भर की जवान महिलाएं संघर्ष कर रहे हैं. बलवान बनो और हिम्मत बांध लो.
Oh.
Many times, as general,
जब महाअधिष्ठाताएं पुरोहित भाई को संबोधित करते हैं महासम्मेलन के दौरान, वो शुरुआत करेंगे ये कहते हुए कि वो महसूस कर रहे हैं कि वो एक शक्तिशाली पुरोहित नेताओं के एक महान सेना को संबोधित कर रहा है। आज रात मैं महसूस करती हूँ कि मैं परमेश्वर की चुनी हुई पुत्रियों के महान सेना के सामने खड़ी हूँ।
You are a commanding and beautiful sight. I would like to
मैं इस शाम का शुरुआत करना चाहती हूँ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। बलवान बनो और हिम्मत बांध लो, भय न कर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ प्रभु तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। मोसेस वो शक्तिशाली भविष्यवक्ता था जिसने इज़राइल के बच्चों को इजिप्ट की भूमि से बाहर ले गया था, जहां वो गुलाम थे और उनके झूठे भगवान को पूजना पड़ता था। जहां वो मुक्त होते हैं सच्चे और जीवित ईश्वर को पूजने के लिए। मोसेस के मृत्यु के पर जोशुआ को ईश्वर द्वारा भविष्यवक्ता नियुक्त किया गया जो इस चमत्कारी यात्रा को पूरा करेगा। जोशुआ एक प्रभावशाली नेता था। बाइबल डिक्शनरी में उसे सबसे ऊंचा कोटि का शिरधावन सैनिक और बतलाता है कि उसके नाम का अर्थ है ईश्वर सहायता है। उसका प्रेरित नेतृत्व की बहुत जरूरत थी क्योंकि अभी भी कई नदियां थी पार करने को और युद्ध लड़ने को। प्रभु जानते थे कि भविष्यवक्ता जोशुआ और इज़राइल के बच्चों को इस सामने समय बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। जोशुआ की पुस्तक के पहले अध्याय में प्रभु कई बार उसे बताता है, बलवान बनो और हिम्मत बांध लो। हिम्मत शब्द का अर्थ बतलाया गया है मानसिक या नैतिक शक्ति जिससे खतरा भय या कठिनाई में लगे रहने और का विद करने के लिए। उनके हिम्मत और अग्रकर्ता के कारण जोशुआ और इज़राइल के बच्चे प्रतिज्ञा के देश में दाखिल हो सके और प्रभु की आशीर्वाद में खुशहाली पा सके। जोशुआ और इज़राइल के बच्चे बहुत समय पहले जीवित थे, मगर हमारे समय में हम भी संघर्ष कर रहे हैं प्रतिज्ञा के देश में दाखिल होने के लिए। जोशुआ के पुस्तक के पहले अध्याय में हम चार विश्वासशाय गाइड पाते हैं रुकावटों से विजय पाने के लिए, यात्रा समाप्त करने के लिए और प्रभु के आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिज्ञा के देश में। प्रथम वर्स 5 में प्रभु जोशुआ से वादा करता है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। हम इस वादे में हिम्मत और शक्ति पा सकते हैं कि प्रभु हमेशा साथ रहेगा और हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। उनकी एक प्रिय पुत्री की तरह तुमने उन्हें आश्वासन और मार्गदर्शन का हक है प्रार्थना की शक्ति द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ कवनेंट्स में हम पढ़ते हैं कि हमें विनम्र रहना है और प्रभु हमारे ईश्वर हमें हाथ पकड़ कर ले चलेगा और हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। मैं इन शब्दों पर विश्वास करती हूँ और तुमसे वादा करती हूँ कि स्वर्ग पिता हमारे प्रार्थनाओं को जरूर सुनता और जवाब देता है, मगर अक्सर धीरे की आवश्यकता होती है जब हम प्रभु की प्रतिज्ञा करते हैं। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं हम शायद विश्वास करने लगते हैं कि हमें भुला दिया गया है या हमारा प्रार्थना अनसुनी रह गई है। ये सच नहीं है। मैं राजा डेविड के सहानुभूति के शब्द पसंद करती हूँ, मैं धीरे से प्रभु की प्रतिज्ञा करता रहा और उसने मेरी और झुक कर मेरी दुआई सुनी। चाहे जो भी तुम अपने व्यक्तिगत यात्रा में अनुभव करो, यशुआ में पाया गया सबसे पहला गाइड हमें प्रार्थना करने के याद दिलाता है। दूसरा गाइड वर्स 7 में पाया जाता है जब प्रभु जोशुआ को बतलाता है सभी व्यवस्था के अनुसार करने में चौकासी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। प्रभु जोशुआ को आज्ञाओं का पालन में चौकस रहने को कह रहा है और प्रभु के मार्ग से हटा नहीं चाहिए। प्रधान हंटर ने सिखलाया, जोशुआ जानता था कि उसके आज्ञाकर्ता सफलता लाएगी, भले ही वो नहीं जानता था कैसे सफलता प्राप्त होगी।
To help us understand the importance of choosing the path of strict obedience. End of quote. A month ago,
एक महीने पूर्व मैंने जवान महिलाओं के एक दल से भेंट की। मैंने बड़ी लड़कियों से पूछा वो क्या सलाह देंगी एक नई बीहाइव को उसे विश्वासी और शुद्ध रहने में मदद करने के लिए हर एक स्थिति में जो उसके सामने आएगा। एक महिला ने कहा, जब तुम अपने पाठशाला के हॉल में चलोगी कुछ देखोगी जो अच्छा नहीं लगता है, तुम उत्सुक जाओगे और देखना चाहोगे। मेरी सलाह तुम्हारे लिए ये है, मत देखो। मैं वादा करती हूँ तुम पछताओगे अगर तुम देख लोगी। विश्वास करो मेरा, सिर्फ सामने देखते चलो। जब मैंने इस जवान महिला को सुना, मैं जानती थी कि मैं जोशुआ के लिए प्रभु की सलाह को सुन रही हूँ, ना तो दाएं मोड़ ना और ना बाएं। हर दिन के प्रस्तुति और लागू किया गया इन अंतिम दिनों में, जवान महिलाओं उन बेकवा से बचो जो तुम्हारे आसपास है धरती के आज्ञाओं का पालन करने द्वारा। सीधा अपने अनंत लक्ष्य की ओर देखिए। दूसरा गाइड हमें याद दिलाता है कि ऐसा करने से हम सुरक्षित रहेंगे और जहां जहां जाएंगे वहां वहां सफल होंगे। फर्स्ट एट में हम अपने तीसरा गाइड पाते हैं। यहां प्रभु एक व्यवस्था के पुस्तक की बात करता है और जोशुआ को बताता है कि वो इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकासी करे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु जोशुआ को आदेश देता है और हम सबको भी धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए दैनिक धर्मशास्त्र अध्ययन, खास तौर पर मोर्मन धर्मशास्त्र पढ़ना एक अतल नींव बनाता है हमारे बढ़ते यीशु मसीह के गवाही और उनके सुसमाचार के लिए। प्रधान हेरोल्ड बी ली ने आदेश दिया, अगर तुम दैनिक रूप से धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हमारे गवाही कमजोर होते जाते हैं और हमारी आत्मिक की गहराई नहीं बढ़ती। धर्मशास्त्र के पन्नों में अग्नितित निर्देशन, वादे, सुझाव और याद दिलाने वाली बातें हैं जो प्रतिज्ञा के देश की हमारी यात्रा में मदद करती है। तीसरा गाइड हमें हर दिन धर्मशास्त्र पढ़ने और ध्यान देने पर निर्देश करता है ताकि हम प्रगति और सफलता हासिल कर सके। जब प्रभु जोशुआ से बातें करना समाप्त करता है, जोशुआ तब इसराइल के बच्चों से बातें करता है। उसकी भाषण की समाप्ति पर वर्स 16 में इसराइल के बच्चे उनके शब्दों का उत्तर देते हैं और हमारे लिए एक चौथा गाइड प्रदान करते हैं। वो कहते हैं, जो कुछ तुमने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे और जहाँ कहीं तू भेजे वहाँ हम जाएंगे। यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के सदस्य होने के नाते हमारा ये मौका है इसी वचन को लेने का, भविष्यवक्ता प्रधान मॉनसन के आज्ञा का पालन करने के लिए जो आज रात हमारे साथ मौजूद है। प्रार्थना और आत्मा की पुष्टि द्वारा हम सब जीवित भविष्यवक्ता की व्यक्तिगत गवाही प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य वक्ता को सुनना और उसके सलाह पर अमल करना हमें खास आशीर्वाद पाने का मौका देता है। पिछले महासम्मेलन में प्रधान मॉनसन के दिए के कुछ भविष्यवाणी के वादों को सुनिए। परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, उसकी वादा की गई शांति तुम्हारे साथ अभी और सदा रहे। विशाल वादे हमारे इंतजार कर रहे अगर हम सच्चे और विश्वासी हो। मैं स्वर के आशीर्वाद हर एक पर छोड़ता हूँ। अगले सप्ताह महासम्मेलन में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप शिक्षाओं और वादों को सुनो जो भविष्यवक्ता और उनके देवदूत द्वारा दे जाएगी। फिर चौथे गाइड को अमल में लाए भविष्यवक्ता के सलाह अनुसार करने से और एक बार फिर पुष्टि करने की कि जो कुछ उसने हमें करने को कहा हम करेंगे और जहां उसने हमें भेजा हम जाएंगे। इस समय पर ये चार गाइड्स प्रार्थना, ईश्वर के आदेश के प्रति आज्ञाकृता, दैनिक धर्मशास्त्र अध्ययन और जीवित भविष्यवक्ताएं के सलाह मानने की प्रतिज्ञा शायद छोटा और सरल बात लगेगी। मुझे अल्मा में पाए गए धर्मशास्त्र पर आपको याद दिलाने दे। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि छोटी छोटी साधारण बातों से बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। जब हमारे दैनिक जीवन में अजमाई जाए ये चार छोटी और साधारण गाइड्स जोशुआ के पुस्तक से मिल जाएगी हिम्मत और बल का सबसे शक्तिशाली स्रोत प्रदान करने के लिए। स्वर्ग के पिता जानता है हमारे व्यक्तिगत यात्रा आसान नहीं होती। हम हर दिन ऐसी परेशानियों से गुजरते हैं जिसके लिए हिम्मत और बल की आवश्यकता होती है। चर्च न्यूज की हाल की एक कहानी इस सच्चाई की पुष्टि करती है। कुछ महीने पहले एक हाई स्कूल की एक अध्यापिका ने एक दिन अपनी शिक्षा आरंभ की विद्यार्थियों के कमरे को एक की ओर खड़े रहने को कहा और एक राजनीतिक विषय को मानते हैं और जो नहीं मानते कमरे के दूसरे ओर खड़े हो गए। जब विद्यार्थियों ने अपने अपने जगह ले ली अध्यापिका ने खुद ना मानने वालों की ओर खड़ी हो गई। वो जवान महिला जो एक मायमे थी अपने वार्ड में ने सब कुछ झेला जो उसके विश्वास के खिलाफ था। वो शांत रही एक सार्वजनिक बचाव बहुचार के समय जो एक प्रधिकार से आया था। इस जवान महिला ने विशेष हिम्मत दिखलाई अपने खुद के जंग मैदान पर जो आज उसका स्कूल का कमरा था। जहां भी तुम हो और चाहे तुम जिस किसी भी मुसीबत का सामना कर रहे हो, मैं आशा करती हूं कि तुम जोशुआ के पुस्तक में दी गई गाइड्स को फायदा उठाओगी ताकि तुम प्रभु के वादे पर भरोसा कर सको। बलवान बनो और हिम्मत बांध लो, भय न कर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगी वहाँ वहाँ प्रभु तेरा परमेश्वर तेरा संग रहेगा। मैं गवाही देती हूँ कि स्वर्गीय पिता आप में से हर एक को जानता और प्रेम करता है। अगर तुम उसके ओर जाओ वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें बल हिम्मत का आशीर्वाद देगा जिससे तुम्हें सहायता मिलेगी उस तक की अपनी यात्रा को समाप्त करने में। मैं आभारी हूँ धर्मशास्त्र के लिए और शक्तिशाली उदाहरण के लिए जैसे भविष्यवक्ता जोशुआ। मैं आभारी हूँ प्रधान मोहसिन के लिए जो परिश्रम कर रहा है हमें सुरक्षित स्वर्ग पिता तक पहुँचाने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसराइल के बच्चों की तरह हम अपने प्रतिज्ञा के देश में दाखिल हो जाएंगे और प्रभु के आशीर्वाद में आराम पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Last August, we took some of our grandchildren.
पिछले अगस्त हमने अपने पोतियां को लेकर टिपनोगस केव नेशनल मॉन्यूमेंट गए। तुम्हें 2.4 किलोमीटर की पैयात्रा करना पड़ता है एक बहुत कठिन मार्ग पर गुफा तक पहुंचने के लिए, मगर ये प्रयास लाभदायक है क्योंकि हम गुफा के सुंदर स्पाइरल होती हुई बनावट को देख सकोगे। मुझे यकीन थी कि 9 वर्ष रूति के कठिनाई होगी, मगर मैं सोच रही थी कि क्या 6 वर्ष कैरोलाइन के पास वो शक्ति और दम होगा अंत तक पहुंचने के। कैरोलाइन निराश होने लगी। रूति अच्छा कर रही थी और कैरोलाइन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। हमने अपनी रफ्तार धीमी की ताकि कैरोलाइन साथ रह सके। फिर ऐसा लगा कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। तेज हवाएं आए और हवाओं से जो गर्दा आया उसे देखना मुश्किल था। हम थकान से चढ़ते रहे अपने लक्ष्य के 3/4 तक, मगर अभी भी पहाड़ चढ़ने का सबसे कठिन भाग नहीं था। थके हुए कैरोलाइन बैठ गई और आंसू भरे आंख लेकर कहा, मैं आशा छोड़ती हूँ, मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। हम बैठ कर सोचने लगे हमें क्या करना है। हमने एक योजना बनाया, हमने तय किया कि हम अपने कदम गिनेंगे और देखेंगे 100 कदम के बाद हमें कैसा लगता है। रूथी और मैंने कैरोलाइन को आश्वासन दिया कि हम उसकी मदद करेंगे। हमें ऐसी वस्तु को ढूंढना था जो हमें खुश करते हैं। माहौल बदल गया। कैरोलाइन ने योजना अनुसार चढ़ने का चुनाव किया। 100 कदम लेने के बाद कठिन कार्य संभव लगने लगा। ये जानकर कि हम उसकी मदद करेंगे, कैरोलाइन के पास आगे बढ़ने का आत्मविश्वास था। क्या तुम कभी डरे हुए और निराश थे कैरोलाइन की तरह, जब तुम एक चुनौती का सामना किया जो तुम्हारी क्षमता से बाहर था? क्या तुम कभी आशा छोड़ने की सोची? कल्पना करो कैसे जोशुआ, जो महान भविष्यवक्ता मोसेस का उत्तरवर्ती था, ने महसूस किया होगा यह जानते हुए कि वो इसराइल के बच्चों को वादा किया गया भूमि पहुंचाएगा, मगर प्रभु ने उसे आश्वासन दिया 3 बार याद दिलाते हुए कि बलवान बनो और हिम्मत बांध लो, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर उनके साथ रहेगा। धर्मशास्त्र उन पुरुषों और महिलाओं के कहानियों से भरा है जिन्होंने बहुत हिम्मत दिखलाया प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए। प्रभु चाहता है कि तुम क्या करो? वो चाहता है कि तुम परमेश्वर की एक बहादुर और शुद्ध बेटी बनो, इस तरह जीवन बिताओ कि तुम मंदिर की आशीर्वाद प्राप्त करने की योग्य रहो और उन तक पहुंचाओ। आज की दुनिया में इसके लिए हिम्मत चाहिए। नैतिक चुनौती चुनने की क्षमता इस योजना का महत्वपूर्ण भाग है। तुमने पहले से कुछ अच्छे चुनाव किए हैं। जन्म से पहले तुमने धरती पर आने का और एक मरणशील शरीर पाने का और अपने आप को साबित करने का चुनाव किया था। तुमने बपतिस्मा लेने का चुनाव किया था, जो कि पहले धर्म विधि है अनंत जीवन के मार्ग के लिए। इस समय तुम मरणशील जीवन अनुभव कर रहे हो, जहां तुम चुनौती करना जारी रखोगे। मगर जैसे जैसे तुम बड़े होंगे, मार्ग और भी कठिन हो जाएगा और कैरोलाइन की तरह तुम भी शायद आशा छोड़ना चाहोगे। जीवन की जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और मोड़ पर चुनाव और बेकावन से भरा हुआ। शैतान भ्रम की हवाएं फूकेगा जो तुम्हें ये सवाल पूछने पर मजबूर कर की जाए, यही वो मार्ग जिस पर तुम चलना चाहते हो। क्या वेकई आज की दुनिया में शुद्ध रहना संभव है? जवाब मेरे जवान दोस्तों है, हाँ। और मेरा सलाह आपके लिए कुछ वैसा है ही है जो विश्व युद्ध 2 के दौरान विंस्टन चर्चिल ने दिया था, कभी 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 भी आशा नहीं छोड़ना। इसके लिए हिम्मत चाहिए, मगर तुम्हारे पास उधार की योजना है। तुम्हें कौन सी चीज मदद करेगी योजना के अनुसार चलने के लिए और ईश्वर का बहादुर और शुद्ध पुत्री बनने के लिए? पहला, एक ताकतवर गवाही हासिल करो। दूसरा, स्वर्ग पिता यीशु मसीह अपने परिवार और औरों के सहायता तलाश जो तुम्हारे साथ देंगे। और आखिरी, पवित्र आत्मा। प्रेसिडेंट थॉमस मॉन्सन ने जवान महिलाओं से वादा किया है, तुम्हारी गवाही का जब लगातार पोषण होता रहेगा, तुम्हें सुरक्षित रहेगा। तुम्हारी गवाही शक्तिशाली होती है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अनुभव द्वारा कोई भी पूरी गवाही एक ही वक्त में नहीं हासिल कर लेता। तुम्हें याद होगा कि पहाड़ से के सबसे कठिन भाग पर चढ़ने के लिए हम एक के बाद एक कदम ले रहे थे। गवाही हासिल करने के लिए तुम्हें धीरे धीरे उसके पोषण करना होगा। जैसे तुम अपने आप से प्रार्थना, धर्मशास्त्र अध्ययन, आज्ञाओं का पालन और दूसरों की सेवा करने के आदत डालोगे, तुम्हें कुछ जनों की प्रेरणा का आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हारी गवाही को मजबूत करेगा। पर्सनल प्रोग्रेस एक प्रशंसनीय तारीख बताता है जिससे तुम अपने गवाही का प्रोत्साहन धीरे धीरे कर सको। दूसरा दूसरों की सहायता के लिए तुम्हें और शक्ति और सहारा देने के लिए। पहले अपने स्वर्ग पिता के पास जाओ प्रार्थना द्वारा। तुम उनकी पुत्री हो, वो तुम्हें जानता और प्रेम करता है। वो तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनता और उनके जवाब देता है। हमें धर्मशास्त्र में कई बार बतलाया गया है, सदैव प्रार्थना करो। जब तुम प्रार्थना करोगे, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, जैसे प्रभु जोशुआ के साथ था। हम सब उद्धारकर्ता की सहायता चाहते हैं योजना अनुसार चलने और पिता जो स्वर्ग में है तक पहुंचने के लिए। शायद तुमने कुछ गलतियां की है या किसी अन्य मार्ग पर चले गए हो। उनकी उद्धारकर्ता तुमसे प्रेम करता और उससे क्योंकि उद्धारकर्ता तुमसे प्रेम करता और उसे अपने जीवन तुम्हारे लिए दिया है, तुम पश्चाताप कर सकते हो। अभी से निश्चय कर लो कि तुम वो करोगे जो पश्चाताप के लिए आवश्यक है। प्रभु भोज के सेवन योग्यता से करो हर सप्ताह और अपने जीवन को शुद्ध गतिविधियों से भर दो जो आत्मिक शक्ति देती है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम बेकावा के रोकने की क्षमता में और मजबूत हो जाएगा। अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता भी तुम्हारी सहायता के लिए इस धरती पर है। भविष्यवक्ता आज के लिए बात करते हैं। उनके शब्दों को तुम जकड़ कर रखना। वो तुम्हें साइन पोस्ट देंगे जो तुम्हें खतरे की चेतावनी देगा और मार्ग पर सुरक्षित रहेगा। वो साइन पोस्ट जो खास कर तुम्हारे लिए है, फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ में पाया जाता है। योजना की सबसे महान आशीर्वाद है कि हम परिवारों में आयोजित है। तुम्हारे पास माता पिता है जिनसे तुम ज्यादा ज्ञान और अनुभव तुम्हें तुम्हारे दिव्य क्षमता तक पहुंचा सकते हैं। अपनी माता आजा आजी नानी और अन्य धार्मिक महिलाओं से सीखो जिनके गवाही मजबूत है। तुम ही उसकी सर्वश्रेष्ठ नेता सलाहकार उदाहरण हो। हम आशा करते तुम अपनी पुत्री के साथ पर्सनल प्रोग्रेस पर काम करने के निमंत्रण स्वीकार करोगे। युवा महिलाओं, अच्छे दोस्त चुनो जो तुम्हारे योजना अनुसार चलने के तुम्हारे निर्णय में सहारा दे। रूथी की तरह जिसने कैरोलाइन को प्रोत्साहन दिया, हम जानते हैं कि तुम में से कई बहुत कुछ कर सकते हैं अन्य जवान महिलाओं को मजबूत करने के लिए। जवान महिलाओं का सम्मान मिलने के बाद तुम्हारी भारी होती है बड़ी बहन बनने का। आखिरी में पवित्र आत्मा के साथ के लिए योग्य रहो। जब हमने कैरोलाइन की मदद की, अपने आसपास की अच्छाई को ढूंढा और प्राथमिक के गीत भी गाए, हमने आत्मा के स्वागत किया। हमने प्रेम, आनंद, शांति महसूस किया जो आत्मा के फल है। तुम्हें उस शांति और आश्वासन की जरूरत होगी जब शैतान तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे संदेह की हवाओं से, जब तुम बहक जाओगे दूसरे मार्ग पर। मुझे जूली को, जो एक जवान महिला थी जिसने एक चुनौती का सामना किया, पवित्र आत्मा के प्रभाव को सुनकर ये अनुभव को बताने का मौका दिए। वो पुराना नियम पढ़ रही थी जब उसने उसके मन में आया मैथ्यू 5 पढ़ो। उसने उस प्रभाव पर अमल किया और मैथ्यू में पढ़ा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने शैतान सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। उनके लिए अच्छा करो जो तुमसे नफरत करते हैं। दूसरे दिन उसको कुछ कठिनाई थी उसके दोस्तों को लेकर जो उसके प्रति कठोर थे और उससे दी थी। पहले वो बहुत निराश थी और फिर उसने सोचा, मुझे इसके लिए तैयार किया गया था। आत्मा ने मुझे मैथ्यू पढ़ने के लिए प्रेरित किया था और मुझे दोस्तों के प्रति दयालु रहना है और उन्हें माफ करना है। मेरे प्यारे जवान महिलाओं, मैंने तुमसे कई से भेंट की है जो जूली की तरह आशा नहीं छोड़ा कठिन परिस्थितियों से सामना, मगर योजना पर चलने का चुनाव किया। अपने स्वर्ग पिता यीशु मसीह और अन्य लोगों से मदद लो जो तुम्हारे योजना अनुसार चलने के निर्णय में तुम्हें सहायता देगी। मैं गवाह देती हूँ कि अगर तुम ये सब करोगे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा और तुम उस मार्ग पर रह सकोगे जो मंदिर और अनंत जीवन की ओर ले जाती है। बलवान बनो और हिम्मत बांध लो और कभी 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 भी आशा नहीं छोड़ना। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times, and in all things, and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth, the Father's mission to fill on earth. I'll follow His beloved Son, and in His name like Him become. And as I grow, His light will do. Temptations seem to call you by name. Be strong, be strong. When they question everything, you put your faith in every day. Be strong, be strong. And if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen servants, God will lead you back home.
Again, my dear young sisters,
फिर से मेरे प्यारे जवान बहनों, याद भी दुनिया भर में चुनौती है किसे जैसे तुम्हें सामना करते जो अनोखा है इस समय के लिए।
सद्गुण से रहना और सद्गुण बने रहने के लिए तुमको अपने दिव्य स्वभाव के प्रति सच्चा रहने हैं और नमूना की सोच विचार को सुस्पतित करना और व्यवहार को ऊंचा।
मैं अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा विश्वास भर जाए क्योंकि आप दयालु परमेश्वर की बेटी हैं।
तुम मेरी प्यारी जवान महिलाओं ने कई अच्छे चुनाव की है। अब तुम सद्गुण की नमूना को सुस्पतित करना जो तुम्हें इस मार्ग पर रखेगी जिंदगी भर।
बहनों, आत्मा पर भरोसा रखना और निर्भर रहना, जैसे आप अपनी जिंदगी की साधारण मौके लेते हो और सुंदरता और उपयोगी चीजों को उत्पन्न करती हो। आप अपने आसपास की दुनिया को ही नहीं बदलोगे पर तुम्हारे अंदर वाले दुनिया को भी।
जो छोटे और सरल चीजों को तुम आज चुनती हो करने के लिए, वो कल एक महान और महिमा भरे आशीर्वाद बन जाएगी। क्या एक धार्मिक जवान महिला दुनिया को बदल सकती है? उसका जवाब दोहराया गया है, हाँ। वो हर दिन की लगातार की चीजें जो तुम करते हो तुम्हें एक नेता उदाहरण बनने की शक्ति देगा। प्रतिनिधि प्रार्थना, प्रतिनिधि धर्मशास्त्र को पढ़ना, आज्ञाकर्ता प्रति दूसरों की सेवा करना, जैसे आप ऐसा करेंगे तुम उद्धारकर्ता के करीब और बढ़ोगे।
मेरे जवान दोस्तों, बलवान बनो। तुम जानते हो कि क्या सच और गलत है, और कोई भी बदलाव चाहे कितना भी आकर्षक शिक्षक को बदल सकते हो। अगर तुम्हारी दोस्त तुमको जोर करता है कि कोई कार्य करो जो तुम जानते हो कि वो गलत है, तुम्हें ही सच के लिए खड़ा होना पड़ेगा अगर तुम्हें अकेला भी खड़ा होना पड़े।
We believe as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.
मैं आशा करती हूँ कि तुम सदा याद रखोगी जो तुमने आज रात सीखा और महसूस किया। अब मेरी बारी है तुमसे बात करने की। मेरी तिपियों के समाप्ति पर गायक मंडली गाएगी ओ दाउ रॉक ऑफ आवर सेल्वेशन। हम स्वर्ग के पिता की पुत्रियां हैं, वो हमसे प्रेम करता और हम उनसे। मैं आपके समक्ष होने के लिए विनम्र और धन्य हूँ। प्रभु ने मुझे एक बहुत साफ समझ को आशीर्वाद दिया है कि तुम कौन हो और क्यों इस समय इस धरती पर हो। प्रभु तुमसे प्रेम करता है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे प्रेम करते हो। तुम्हारे सही चुनने की चाहत में और तुम्हारे शुद्ध और साफ रहने की लगन में दिखाती है। हमने गवाही दी है कैंप्स में, गिरजाघर और संध्या सभाओं में। हमने पहाड़ पर सोने के झंडों को लहराया। ब्राजील से बाउंटीफुल यूटा तक वो श्रद्धा दिखाने को जो हमारे दिलों में है, शुद्ध रहने, मंदिर में जाने के लिए योग्य रहने के लिए। हमने प्रार्थना की, मोमन धर्मशास्त्र पढ़ा और हर दिन मुस्कुराया और अपने माताओं, आजी, नानियों और नेताओं के साथ हमारे पर्सनल प्रोग्रेस पर काम किया और हमने अभी अभी शुरुआत की है। ये एक शानदार समय है इस धरती पर होने के लिए और एक जवान महिला होने के लिए। हमें योग्य रहना है, पवित्र वादों को बनाना, मंदिर के धर्म विधियों को प्राप्त करना है। ये हमारा सबसे ऊंचा लक्ष्य है और इस तरह हम विश्व को निर्देश करते रहेंगे शुद्धता में लौटने के लिए। हम सभी कुछ करेंगे एक दूसरे को पवित्र स्थानों में खड़ा रहने में और पवित्र आत्मा को हेल करने, पहचाने और उस पर निर्भर रहने के लिए। हम मसीह की चर्चा करेंगे और मसीह में आनंदित होंगे कि हमारी संतान ये जान सकेगी वो अपने पापों की क्षमा के लिए कहाँ देखे। हमारा उद्धारकर्ता के चट्टान पर ही, जो मसीह परमेश्वर का पुत्र है, पर हमें अपना नींव बनाना है। एक ऐसा नींव जिस पर अगर हम बनाए तो हम गिरे नहीं। जोशुआ के लिए प्रभु का सलाह आज आपके लिए उसका सलाह है, जो बलवान बनो और हिम्मत बांध लो, भय न कर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ प्रभु तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तुम अकेले नहीं। भले ही तुम सिर्फ एक अंतिम दिनों संतो हो अपने पाठशाला में एक या दोस्तों के बीच या अपने परिवार में भी, तुम अकेले नहीं। तुम प्रभु के शक्ति पर निर्भर हो सकते हो। जैसे जोशुआ ने इज़राइल से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन जोशुआ तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कार्य करेगा। ये जोशुआ का पुकार था शुद्धता में लौटने के लिए और वही पुकार आज भी है हमारे लिए। हम दिए गए कार्य को नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो शक्ति और हिम्मत ना हो जो शुद्ध जीवन जीने से मिलता है। तुम बढ़िया विश्वास की जीवन जवान महिला हो। तुमने अपने साथ अपने विश्वास को लाए जब तुम इस धरती पर आए। अल्मा हमें सिखलाता है कि पृथ्वी की नींव के समय से तुमने अध्याधिक विश्वास और अच्छे कर्म को दिखलाया। तुमने अपने विश्वास और गवाही से युद्ध किया परमेश्वर के द्वारा दिए गए योजना को बचाने के लिए। तुम जानते थे कि कठिन होगा और फिर भी तुम आत्मविश्वास थे कि तुम सिर्फ अपने दिव्य मिशन ही नहीं हासिल करोगे पर तुम कुछ बदल सकोगे। तुम विशेष आत्मा जो जिन्हें समय की पूर्णता में आना था कि नींव कि महान अंतिम दिन कार्य की नींव बैठाने में मदद करने के लिए जिसमें मंदिरों का निर्माण और उसमें धर्म विषयों की पूर्ति करना। और अब तुम यहाँ हो वो करने के लिए जिसके लिए तुम्हें रखना गया और तैयार किया गया है। आज रात जब मैं तुम्हें देखती हूँ मैं सोचती हूँ हिलमन के शास्त्र तुरंत की प्रेमिका ऐसी देखती थी। इसीलिए शैतान ने अपने आक्रमण का प्रभाव और तेज कर दिया है तुम्हारे पहचान और सुधरता पर। अगर तुम्हें वो वेकुल उदास विचलित विलंब या अयोग्य कर सकता है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए योग्य होने से या प्रभु के मंदिर से में दाखिल होने से वो जीत जाता है। जवान महिलाओं याद रखना तुम कौन हो। तुम खास हो। तुम परमेश्वर की पुत्रियां हो। तुम उस पीढ़ी की जवान महिला नहीं हो सकती जो शिव शामिल होने से संतुष्ट हो जाती है। तुम्हारे पास श्रेष्ठ होने उत्कार दिखाई देने की हिम्मत होना चाहिए कि तुम आज के दुनिया के फैशन नहीं जानते और तुम अपने आसपास की दुनिया के बारे में नहीं जानते। दुनिया तुम्हारे निरंतर शोर मचाने वाले आवाजों से कहती है आनंद मनाओ सभी कुछ आजमाओ अनुभव करो और खुश रहो। उल्टा पवित्र आत्मा फुसफुसाता और प्रभु आमंत्रित करता है कि तुम शुद्धा के मार्ग पर चलो दुनिया की चीजों को छोड़ो और अपने वादों पर टिक रहो। मैंने हमेशा राजा लुई 16 जो फ्रांस के थे के बेटे की कहानी प्रसन्न की है। एक जवान पुरुष के रूप में उसने बुरे लोगों द्वारा अपहरण किया गया था जिन्होंने उसके पिता जो राजा था को गड्डी से उतारा था। ये आदमी जानते थे कि अगर वो उसके नैतिक रूप से नष्ट कर सकते थे वो गड्डी का हाथगार नहीं खेलेगा। 6 महीने तक उन्होंने उस पर हर गहिनों चीज का सामना किया जो इस जीवन में उपलब्ध है और फिर भी उसे दबाव में आकर नहीं माना। उसका उत्तर सरल था जब तुम चाहते हो वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजा बनने के लिए पैदा हुआ था। राजा के बेटे की तरह तुम सब ने भी ऊंचे जन्म सिद्ध अधिकार पाया है। हर एक के पास दिव्य विरासत है। जब मैं ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी मैंने सीखा कि सच में रानी बनने का अर्थ क्या है। मुझे एक अनोखा मौका मिला था भविष्य वक्ता प्रधान डेविड और मैके से मिलने का। मैं उस अनुभव को कभी नहीं भूल सकती जैसे कि हम घर में दाखिल हुए मैंने उस घर में महसूस आत्मा को महसूस किया। प्रधान मैके एक सफेद सूट पहने हुए थे और उसके बगल में थी उसकी पत्नी। उसने हम सबको बारी बारी आकर अपने बारे में उसे बतलाने को कहा। जब मैं आगे गई उसने अपने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ थामा और जैसे जैसे मैं उसे अपने जीवन और अपने परिवार के बारे में बताती गई वो मेरी आंखों की गहराई में देखता गया। जब हमने समाप्त कर दिया वो अपने पत्नी के हाथ को थामा। अब जवान महिलाओं मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रानी से मिले। वहाँ उसकी पत्नी थी पास ही बैठी थी उसकी पत्नी एमा रे मके। हालांकि उसके चमकते हीरो का मुकुट नहीं पहना था ना कि वो किसी सिंहासन पर बैठी थी। मैं जानती थी कि वो एक सच की रानी है। उसका सफेद बाल उसका मुकुट था और उसकी पवित्र आंखें गहनों की तरह चमक रहे थे जैसे प्रधान मके और बहन मके ने अपने परिवार और अपने आसपास के आपस के साथ के जीवन की बातें की। उनके जुड़े हुए हाथों ने उनके प्रेम के बारे में बहुत कुछ कह दिया। वो कठिन कार्यों से आया विश्वास से संकट को झेलना आशीर्वाद भरोसेमंद शक्तिशाली और हिम्मत वाली बनकर वो उसके अत्यंत श्रद्धा और उसकी पति परिवार और प्रभु के प्रति वफादारी से आई थी। उस दिन हंसविल में मुझे अपने दिव्य पहचान की याद दिलाई और मैंने उस बात को सीखा जिससे मैं अब गहरी सुंदरता कहती हूँ, वो सुंदरता जो भीतर से बाहर चमकती है, वो आत्मिक आकर्षण है। गहरी सुंदरता शुद्धता से आती है, वो उस तरह की सुंदरता है जो तुम शायद शुद्ध महिलाओं में देखती है जो तुम्हारी माता या आजी नानी। वो ऐसी सुंदरता है जो विश्वास पश्चाताप और वादों को निभाने द्वारा प्राप्त होती है। दुनिया शारीरिक आकर्षण पर इतना प्रभाव डालती है और चाहती है कि तुम ये विश्वास करो कि तुम प्रत्येक एक कवर प्रतिका के कवर पर दी गई मॉडल जैसा बनना है। प्रभु तुम्हें बताएगा कि तुम अनोख रूप से सुंदर हो। जब तुम शुद्ध पवित्र और नैतिक रूप से साफ होती हो, तुम्हारी अंदर का सुंदरता तुम्हारे अनोख और मुंह पर चमकती है। मेरे आजी नाना जी कहते थे, जब तुम ईश्वर और उसके अनंत अनुग्रह के करीब रहती हो, तुम्हें बताना नहीं पड़ता, तुम्हारे मुंह पर दिखाई देता है। जब तुम पवित्र आत्मा के साथ की योग्य रहते हो, तुम निश्चय होते हो और तुम्हारी अंदर की सुंदरता और चमक उठती है, और तब सुंदरता तुम्हारे सोच को हमेशा सुंदर रखते हैं। तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएगी ईश्वर के सामने और पवित्र आत्मा तुम्हारे हरदम साथ रहेगी। पवित्र आत्मा का उपहार बुद्धि की क्षमता को जीवित करती है। वो शुद्ध दयालुपन, अच्छाई, नरमी, कोमलता और परोपकार को प्रेरित करता है। वो थी सुंदरता जो मैंने भविष्यवक्ता के घर में पाई थी। उस दिन मैंने सीखा कि जो सुंदरता मैंने बहन मैकेई में देखी थी ही वो सुंदरता है जो महत्वपूर्ण है, और वो एक सुंदरता है जो बरकरार रहता है। अल्मा कड़क सवाल पूछता है जो हमें सोचने देता है, क्या तुमने अपनी आकृति में उसकी किरणों को प्राप्त किया है? हाल में जवान महिलाओं का एक दल मेरे दफ्तर में आई। उनके भेंट की समाप्ति पर एक जवान महिला मुझसे कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सुंदर हूँ। मैंने हमेशा बहुत साधारण महसूस किया, मगर आज जब मैंने तुम्हारे दफ्तर में शीशे से गुजरी, मैंने उसमें देखा और मैं सुंदर थी। वो सुंदर थी क्योंकि उसके चेहरा आत्मा से चमक रहा था। उसने अपने आप को वैसा देखा जैसे स्वर्ग पिता उसे देखता है। उसने उनका प्रतिरूप अपने मुंह पर पाया था। वही अंदर की सुंदरता है। जवान महिलाओं, याद रखो तुम कौन हो। अपने आप को स्वर्ग पिता के नजरों से देखो। तुम चुने गए हो। तुम ऊंचे जन्म के हो। तुम रानी बनने के लिए पैदा हुए थे। ऐसे जियो कि तुम मंदिर जाने की योग रहो और वहां वो सब पाओ जो पिता के पास है। अंदर की सुंदरता को बढ़ाओ। याद रखो कि तुम हमारे स्वर्ग पिता की पुत्रियां हो। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसे अपने पुत्र को भेजा जीने को तरीका बताने के लिए, ताकि किसी दिन तुम उसके पास लौट सको। मैं गवाही देती हूँ कि जब तुम उधारकर्ता के करीब जाओगे, उसकी अनंत प्रेषित संभव करती है तुम्हें पश्चाताप करने के लिए, बदलने के लिए। उनकी प्रेषित तुम्हें शक्तिशाली और हिम्मत वाले रहने में सहायता करेगी। जब तुम अपने शुद्ध से झड़े को उपार करोगे, तुम बहुमूल्य हो। तुम ही वो झंडा हो। और अब मैं प्रभु के शब्दों से समाप्त करूंगी जो उनके अनमोल पुत्रिया हो। सुनो, तुम एक चुनी हुई महिला हो जिसे मैंने नियुक्त किया है। शुद्धता के मार्ग पर चलो, दुनिया के चीजों को हटा दो, वादों पर टिके रहो जिससे तुमने किया है। मार्ग मेरे आज्ञाओं का पालन हमेशा करते रहो और सच्चाई का मुकुट तुम पाओगे। इसका मैं गवाही देती हूँ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमेन।
The choir, thank you.
गायक मंडली की जवान महिला, धन्यवाद तुम्हारे प्रेरणा भरे संगीत के लिए। हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन सभी को जिन्होंने भाषण दिया है। अब हमारे सौभाग्य होगा प्रधान डीडा एफ उद्धव को सुनने के। प्रधान उद्धव के टिप्पणियों के समाप्ति पर गायक मंडली और सभा गाएगी हाउ फर्म आवर फाउंडेशन। प्रार्थना क्रेंडिक स्माइली द्वारा बोला जाएगा, जो सैंडी यूटा विलो क्रिक स्टेक की एक लोरल है। प्रधान उद्धव।
My dear young sisters,
मेरे प्यारे जवान भाइयों दुनिया भर में मैं हबारी हूँ और समांतित हूँ आज आपके साथ उपस्थित होने के लिए प्रधान मॉनसून और गिरजाघर के सभी नेता तुमसे प्रेम करते हैं हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए विश्वास पर आनंदित होते हैं बातें हुए वर्षों में मैंने कई सुंदर भाषाओं को ज्ञान मिला हर एक लगाओ और दुनिया ध्यान देने होगी उदाहरण के तौर पर हर भाषण में एक वाक्य होता है जो दुनिया के कोई और वाक्य के चमत्कारी और वादाओं से भरा होता है वो वाक्य है एक समय के बाता क्या वो चमत्कारी शब्द है नहीं एक समय का बाता हमसे उसका वादा करता है जो कि और प्रेम भरी एक कहानी राजकुमारियों और राजकुमारों के एक कहानी इसमें शामिल होने होंगे हिम्मत आशा और आनंद प्रेम की कहानी ऐसी की कहानियों में दयालु कमीने से विजय पाता है और अच्छा बुरे से विजय पाता है मगर शायद सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ जब हम आखिरी पढ़ने में पर जाते हैं और हमारी आखिरी अंतिम लाइन पर आते हैं और वो उस समय के बाद हमेशा खुशी से जिए क्या वो हम सब के चाहते नहीं हम अपने की कहानियों के नायक और नायिकाएं बने और अंत में हमेशा खुशी से जिए आज मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत असाधारण चीज पर ले जाना चाहता हूँ तुम्हारे जवान महिलाओं की पर्सनल प्रोग्रेस की पुस्तक के पहले पढ़ने पर उन्हें ये शब्द मिलेंगे तुम स्वर्ग पिता की एक प्रिय पुत्री हो इस खास समय में धरती पर आने के लिए तैयार की गई हो एक पवित्र और विशाल लक्ष्य के लिए वो शब्द सच्चा है वो एक कहानी में नहीं बनाई गई है क्या ये जाना ध्यान देने योग्य नहीं है कि कमरा आनंद स्वर्ग पिता तुम्हें जानता तुम्हें सुनता तुम्हारे ख्याल कर रखता और तुमसे एक आनंद प्रेम के साथ प्रेम करता है वास्तव में तुम्हारे लिए उनका प्रेम इतना महान है कि उसने तुम्हें इस मरणशील जीवन एक समय के बाद को एक बहुमूल्य उपहार के रूप में दिया है तुम्हारे अपने संपूर्ण कहानी के साथ जो सच्चाई है और जो कि मुसीबत और महानता उदारता हिम्मत और प्रेम का मौके से भरी है और सबसे विशाल है वो तुम्हें एक उपहार देता है जो अमोल है और समझ से भारी है स्वर्ग पिता तुम्हें सबसे महान उपहार देता है जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं आनंद जीवन और तुम्हारे खुद से हमेशा की खुशहाली का मौका और आनंद आशीर्वाद मगर ऐसा आशीर्वाद कोई मोल के नहीं मिलता है वो तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम्हें उसकी चाहत है वो मिलता है ये समझने के से कि आप कौन हैं और कि तुम्हें क्या बनना है ऐसे उपहार के लिए योग्य रहने के लिए मुसीबत यात्रा का भाग है इस कहानी में मुख्य किरदार शायद एक राजकुमारी का एक गवाही का गवाही की थी वो शायद एक कन्या का एक ढूंढने वाली स्त्री है तुमने एक बात सामने पढ़ोगे उन्होंने दरवगीय से विजय पाना है सिंड्रेला को अपनी कामिनी सौतेली माता और बुरे सौतेली बहनों का जलना था ब्यूटी एंड द बीस्ट में बेल बनती है कि डरावने दिखने वाले पशु की अपने पिता को बचाने के लिए वो अपना घर और परिवार बलिदान कर देती है वो कहानी रम्पलस्टिल्स्किन में एक गरीब मिल कार्यकार राजा से बड़ा करता है कि उसकी बेटी से एक सिक को सोना में स्पिन कर सकती है राजा तुरंत उसके बुलाने भेजती है और उसके एक कमरे में बंद कर देता है एक कीप बाद में इस कहानी में वो अपना पहलता बच्चा खोने के खतरे का सामना करती है जब उसे चमत्कारी पशु का नाम पहुंचा जाता है। इन सभी कहानियों में सिंड्रेला बेल और कारीगर की बेटी को दुख और दुर्भाग्य से अनुभव करना पड़ा उनके हमेशा की खुशहाली तक पहुंचाने के लिए। उसके बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने खुद के बकावा दुर्भाग्य और दुख के कठिन समय से ना गुजरना पड़ा। उनके एक समय एक के बाद था और हमेशा की खुशहाली के बीच उन सबको बहुत दुर्भाग्य अनुभव करना पड़ा। क्यों सबको दुख और संकट अनुभव करना पड़ता है? क्यों हम सिर्फ खुशहाली और शांति में नहीं जी सकते जहां हर दिन आश्चर्य खुशी और प्रेम से भरा हो? धर्मशास्त्र में बतलाता है हर एक कामों में विरोध स्वाभाविक है क्योंकि उसके बिना हम मीठा और कड़वा का अंतर नहीं जान पाते। क्या लंबी दौड़ लगाने वाली महिला दौड़ के अंत के जीत की खुशी महसूस कर सकती है अगर उसने घंटों से मेहनत की पीड़ा ना सही होता? क्या वो पियानो बारक हो खुशी महसूस कर सकती कि जो संगीत के एक कठिन भाग में महार होने में लगा बिना लंबे समय के अभ्यास की? कहानियों में जैसे जीवन में भी दुर्भाग्य हमें ऐसी बातें सिखलाता है कि क्यों किसी और तरीके से नहीं जान सकते। दुर्भाग्य के लिप्रचतर की गहराई को बढ़ाने में मदद करता है जो कई और से नहीं आता है। हमारे स्वर्ग प्रेमी स्वर्ग के पिता ने हमें एक चेतावनी और मुसीबत भरे दुनिया में रखा है ताकि हम विरोध द्वारा समझदारी से बलवान बने और खुशहाली अनुभव करें। मुझे एक व्यक्तिगत अनुभव बताने के मौका देने जो मेरे साथ घटा जब मैं युवा था, जब हमारे परिवार फ्रैंकफर्ट जर्मनी में गिरजा कर रहा था। जब परिवार को प्रचारण ने एक नए परिवार को हमारी सभा में लाई जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। वो एक माता थी जिसके पास दो सुंदर पुतियां थी। मैंने सोचा कि यह प्रचारक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैंने गौर किया उसके पुत्री पर जिसके सुंदर काले बाल और बड़े भूरे आंखें। उसके नाम था हैरियत और मैं सोचता हूँ मैं उसे प्रेम करना लगा उस पहले से चंद से जब मेरी नजरें उस पर पड़ी। दुर्भाग्य से यह सुंदर जवान महिला मेरे प्रति वैसा नहीं महसूस कर रहा थी। उसके पास कई जवान पुरुषे थे जो उसे जान पहचान बढ़ाना चाहते थे और मैं सोचने लगा क्या वो मुझे कभी फिर सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा समझेगी। मगर उसे मैं रखा नहीं। मैंने तरीके ढूंढे वहां होने को जहां वो थी। जब मैं प्रभु बोझ लेकर जाता मैं देख लेता कि मैं उस जगह पर हूँ कि मैं ही उसे प्रभु बोझ दूँ। जब गिरजाघर खास गतिविधियां होती मैं बाइक पर हैरियट के घर तक जाता और दरवाजे का घंटे बजाता। हैरियट के माता ज्यादातर आती थी दरवाजा खोलने। सच में वो अपने अपार्टमेंट जो चौथे मंजिल पर थे को रसोई की खिड़की खोल कर पूछती मुझे क्या चाहिए था। मैं पूछता कि क्या हैरियट मेरे बाइसिकल पर गिरजाघर जाना पसंद करेगी। हैरियट का माता कहती नहीं, वो बाद में आएंगी, मगर मैं खुशी से तुम्हारे साथ गिरजाघर जाऊंगी। ये वो नहीं जो मेरे मन में था, मगर मैं कैसे इनकार कर सकता। अंत फिर हम गिरजाघर जाते। मुझे कबूलना है कि मेरे पास एक बहुत प्रभावपूर्ण बाइक थी रास्तों के लिए। हैरियट के माता ऊपर के लोहे पर बैठी थी मेरे आगे और मैं सबसे खड़ी वाले। भाड़े का चालक बनने की कोशिश कर रहा था उबड़ खबड़ रास्तों में। समय बीता गया। सुंदर हैरियट अन्य जवान पुरुषों से मिलती रही। ऐसा लगता था कि मैं उसके साथ कोई प्रगति नहीं कर रही था। क्या मैं निराश था? हाँ। क्या मुझे हरा दिया गया था? हर किस नहीं। दरअसल पिछले बातें याद करते हुए कोई पीड़ा नहीं होती अपने सपनों के लड़की के माते के साथ अच्छे संबंध रखने से। वर्षों बाद जब मैंने वायुसेना में अपना अभ्यास संपन्न कर दिया तो एक लड़ाई के विमान चालक के रूप में मैंने एक आधुनिक चमत्कार अनुभव किया एरियट के बर्तों में मेरे रजने के जवाब में। एक दिन उन्होंने कहा, डेटा तुम इन बीते वर्षों में काफ़ी बड़ हो गए हो। उसके बाद मैं जल्द कदम उठाए और कुछ ही महीनों में उस महिला से विवाह कर लिया जिसको पहले बार देखा था। मैंने उसे प्रेम कर लिया था। वो कार्य आसान नहीं था, उसमें तड़पने और निराशा के चैन भी थे, मगर अंत में मेरी खुशी पूर्ण हुई और अभी भी कहीं ज्यादा। मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों, तुम्हें जानने की जरूरत है कि तुम अपना खुद का दुर्भाग्य अनुभव करोगे। कोई भी छुटा नहीं, तुम तड़पोगे, बकावा का सामना करोगे और गलतियां करोगे। तुम खुद को सीखोगे जो हर नायिका से सीखा है। वो दुर्भाग्य के प्रति तुम्हारा व्यवहार है, ना कि दुर्भाग्य खुद जो है कैसा तुम्हारे जीवन की कहानी होगी। वहाँ हो है तुम्हारे मध्य में हालांकि जवान जिन्होंने शोक और दुख के पूरे माप को झेल लिया है। मेरा हृदय तुम्हारे प्रति दया और प्रेम से भर गया है। कितने प्यार से तो तुम गिरजाघर के लिए, कितने परम प्रिय हो तुम अपने स्वर्ग के पिता के लिए। ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, देवदूत तुम्हारा देखरेख करेंगे। तुम शायद महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे दुख की गहराई नहीं जानता। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह समझता है। उसने हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा तड़पा है और उसे यह हमारे लिए किया, उसने यह तुम्हारे लिए किया। तुम अकेला नहीं हो। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा बोझ सहने लायक नहीं है, अपना हृदय अपने स्वर्ग पिता के समक्ष रखो और वो तुम्हें थमाएगा और आशीर्वाद देगा। वो तुमसे कहता है जैसे हो जोसेफ स्मिथ से कहा था कि तुम्हारा दुर्भाग्य और मुसीबत थोड़ी ही समय के लिए होगा और फिर अगर तुम उसे अच्छी तरह जल पाओगे परमेश्वर तुम्हें उन्नत करेगा। दुर्भाग्य को झेलने की ही हार्य नहीं जिसे करने से तुम्हें कुशल जीवन अनुभव करोगे। मुझे दोहराने दो, जैसे कैसे तुम दुर्भाग्य और बकावे का सामना करते हो निश्चय करने वाला फैक्टर है ये जानने के लिए कि यह तुम अपने हमेशा के लिए खुशहाली तक पहुँचोगे। मेरे प्यारे छोटे बहनों, तुम जो जानते हो कि सच्चाई है पर टिके रहो। जहाँ भी तुम देखते हो आज तुम्हें खुशहाली की बाधाएं पाओगी। पत्रिकाओं में विज्ञापन संपूर्ण खुशहाली का वादा करते हैं कि अगर हम सिर्फ ये एक कपड़ा, शैम्पू या मेकअप खरीद लें। कुछ जनसाचार मध्यम बुरे कार्य करने वालों को हो जो शरीक बहावाओं को लबावना बना देती है। ऐसा दुनिया में जहाँ बुरे को सच्चा और सच्चे को बुरा प्रस्तुत किया जाता है, कभी कभी सच्चा जानना कठिन हो जाता है। कुछ तरह से ये लिटिल रेड राइडिंग हुड के जब तुम ये नहीं कर पाते हैं कि वो एक देख रहे हो कि या प्यारे दादी माँ है या एक खतरी भेड़िया है। मेरा काम था दुनिया के किसी भी भाग से एक बड़े हवाई जहाज को सुरक्षित हमारे चुने हुए मंजिल तक पहुंचाना। मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैं न्यूयॉर्क से रोम जाना चाहते हैं तो मुझे पहले पूरब की ओर और उड़ान भरनी पड़ेगी। अगर कोई मुझसे कहे कि अगर मुझे दक्षिण की ओर जाना है, मैं जानता था कि वो उनके बातों में कोई सच्चाई नहीं है। किसी भी तरह के समझाना बुझाना, चपलूसी घुस देना या धमकियां मुझे यकीन दिला नहीं थी कि दक्षिण दिशा में उड़ान भरना मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा, मैं जानता था। सच्चा यह है, परमेश्वर जानता है कैसे वहां पहुंचना जाएगा, और उसने तुम्हारे लिए एक नक्शा बनाया है। वो मार्ग जानता है, वो तुम्हारा स्वर्ग पिता है, जो तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी खुशहाली तलाशता है। वो एक अच्छा और पवित्र पिता के संपूर्ण प्रेम से चलता है कि तुम अपने दिव्य मंजिल तक पहुंचो। नक्शा सभी के लिए उपलब्ध है, वो साफ साफ बतलाता है क्या करना है और कहाँ जाना है। मसीह के पास अपने का आने के संघर्ष कर रहना है, परमेश्वर की गवाह बनना चाहते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने स्वर्ग के पिता पर पर्याप्त भरोसा करना है, उनकी योजना पर अमल करने के लिए। फिर भी सब नक्शे पर नहीं चलेंगे, वो शायद उसके देखेंगे, वो शायद उसे सोचेंगे, चाहे सच भी, मगर वो दिव्य निर्देशन पर नहीं चलते। कई विश्वास करते हैं कि कोई भी रास्ता उन्हें एक हमेशा की खुशहाली तक पहुंचाएंगे। कुछ शायद क्रोधित भी होंगे जब अन्य लोग को जो मर्ज जानते हैं उनकी मदद करना चलेंगे। वो सोचते हैं कि ऐसा सलाह पुरानी आज से संबंध नहीं करता। बहनों, वो गलत सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि कभी कभी कुछ लोग आश्चर्य करते होंगे कि वो क्यों गिरजाघर सभाओं में भाग लेते हैं, क्या वो अवश्य कि धर्मशास्त्र लगातार पढ़े। ये है मेरा जवाब, तुम ये सब करते हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए परमेश्वर का मार्ग का भाग है, और ये मार्ग तुम्हें तुम्हारे हमेशा की खुशहाली के मंजिल तक पहुँचाएंगे। हमेशा की खुशहाली सिर्फ परियों का कहानियों में नहीं मिलता, तुम हासिल कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए उपलब्ध है, मगर तुम्हें तुम्हारे स्वर्ग के पिता के नक्शे पर चलना पड़ेगा। बहनों, यीशु मसीह के सुसमाचार को अपनाओ, अपने पूरे दिल हिम्मत और मान से स्वर्ग के पिता से प्रेम करना सीखो, अपने हृदय को शुद्धता से भर लो और अच्छाई से प्रेम करो, हमेशा अपने आप और औरों में सबसे उत्तम दिखलाने को कोशिश करो। जवान महिलाओं के आदर्शों को अपनाओ और उस पर कमल करने को सीखो। फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ में दिए गए कानून के अनुसार जियो। ये कानून तुम्हें मार्गदर्शन और निर्देश करेंगे तुम्हारे हमेशा की खुशहाली तक की, और इन कानून के जीने से तुम तैयार होगे मंदिर के पवित्र बाधक को बनने के लिए, और अच्छाई का अपना खुद का देन स्थापित करोगे अपने व्यक्तिगत परिस्थितियों में। पवित्र स्थानों पर खड़े रहो और अटल रहो, चाहे कितनी भी बकावे या कठिनाइयां आए, और भविष्य की पीड़ाएं आभारी रहेंगे तुम्हारे प्रति, और नाम की प्रशंसा करेंगे तुम्हारे हिम्मत और विश्वासीपन के लिए जीवन के इस नवजात समय पर। मेरे प्यारे जवान भाइयों, तुम जो सच और धार्मिकता के लिए खड़े हो, तुम जो बपतिस्मा के पानी में दाखिल हुए और प्रभु के मार्ग पर चलते हो, हमारे स्वर्ग पिता ने वादा किया है कि तुम गिर जैसे उड़ोगे, तुम दौड़ोगे और थकोगे नहीं, और चलोगे और गिरोगे नहीं, तुम्हें धोखा नहीं दिया जाएगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा और तुम्हें प्रगति करेगा, नरक के तक तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे, और प्रभु परमेश्वर अंधकार से शक्तियों को तुम्हारे पास से हाथ देगा, और स्वर्ग को तुम्हारे हित में उनकी नाम के महिमा में मिलेंगे। बहनों, हम तुमसे प्रेम करता है, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, बलवान बनो और हिम्मत बांध लो, तुम वास्तव में शही आत्मिक पुत्रियों का हो, महान भविष्य की तुम राज कुमारियों है रानियों बनने के लिए, तुम्हारी खुद की आश्चर्यजनक कहानी शुरू हो चुकी है, तुम्हारा एक समय के बाद था अभी है। प्रभु यीशु मसीह के देवदूत के रूप में मैं तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद छोड़ा हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार के आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाओगे और उन पर अमल करोगे, तुम तैयार रहोगे घर और परिवार को मजबूत करने के लिए, पवित्र वादों को बनने और निभाने के लिए, मंदिर के धर्म विधियों को अपनाने के लिए और उन्नत जीवन के आशीर्वाद से आराम पाने के लिए। और वो दिन आएगा जब तुम खुद के आश्चर्यजनक कहानी के अंतिम पन्ने को खोलेंगे, वहां तुम पढ़ोगे और अनुभव करोगे उन अभिष भरे और चमत्कारी शब्दों की संतुष्टि को, और वो हमेशा खुशहाली में जाएंगे। इस मसीह के नाम में आमीन।
Father in heaven,
हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो मैसेज आज हमें मिला है, हम धन्यवाद देते अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लीडर्स के लिए जो हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें सुंदर काउंसल्स दिए हैं. आज हम धन्यवाद देते हैं इस गिरजा के लिए और हमारे मेंबरशिप के लिए. हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी आशीष के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए और आपके प्यार के लिए. हमको मदद कीजिए कि हम अपने घर सुरक्षा से पहुंच सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन.